प्रातः क्लास चल रहा था 20/3/66 रविवार को चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी हर एक सेंटर के अलग अलग रिजल्ट का तो पता पड़ता है ना। जब बाबा दौरे पर जाते हैं यहाँ सब तरफ से रजिस्टर आते हैं और फिर वो आते भी हैं तो मालूम तो पड़ता है ना कि नंबरवार सब कितना पढ़ाई पढ़ते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो अपना सेंटर आप ही चला लेते हैं, कोई तो सेंटर चलाने वाले से तीखे बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत हैं, ढेर हैं जो सेंटर बनाने वाले से जो पढ़ने वाली पढ़ती है वो जाने से ही सेंटर चलाने वाले से बड़े तीखे हो जाती है। तो सारी बात है पुरुषार्थ के ऊपर, ऐसे नहीं कहेंगे घड़ी घड़ी कि माया का तूफान आता है। पढ़ाई में माया का तूफान आने की बात नहीं है, नहीं वो तो फिर चलन ही ऐसी होती है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं, वहां उन सेंटर्स पर भी मास्टर की मत पर नहीं चलते हैं। दुनिया में भी नहीं चलते हैं, वहां तो अपने माँ बाप की मत पर भी नहीं चलते क्योंकि संग दोष में फंस जाते हैं। या तो कोई न कोई हाबी में चले जाते हैं, बड़े आदमियों के बच्चे भी हाबी में चले जाते हैं। पैसा उड़ाना, ये करना वो करना, क्रोध होगा तो साथ से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, अनेक प्रकार के होते हैं। तुम भी बच्चे ही हो ना, और दुनिया में भी तो बच्चे ही होते हैं ना, वो तो बाप के बच्चे होते हैं, फिर उनका बाप भी होता है। ये तो तुम उस बाप के बच्चे हो जिनका फिर ऊपर में कोई बाप नहीं है। बापों का बाप, सुप्रीम बाप, परम पिता कहते हैं, जिसके लिए ही तुम समझते हो कि बरोबर ये हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। और फिर यहाँ संग भी ब्राह्मणों का है, अगर वहां भी जाती है वहाँ सेंटर में रहती है तो भी है, अंदर है, घर में ही तो रहती है, कोई बाहर तो इतना नहीं जाते करते हैं। मनुष्यों को तो बाहर में बहुत जाना होता है, शादी मुरादी फलाना, यहाँ वहाँ बहुत जाना पड़ता है। तो बरोबर कई कई बच्चे संग दोष में भी फंस पड़ते हैं। उल्टा सुल्टा खा लेते हैं, दो दो वर्ष, तीन तीन वर्ष, चार चार वर्ष, अच्छे चलते चलते कोई न कोई वक्त में संग दोष में आ जाते। ऐसे क्यों कहें? क्यों उन पर बस माया का तूफान आया? नहीं नहीं, ये तो उनकी अपनी ही मूर्खता है, जो पढ़ाई और ये जो डायरेक्शंस हैं उन पर न चल कर और जा करके संग दोष में फंस मरती है। ऐसे क्यों नहीं गए हैं बाबा, हम अपने ही पैर के ऊपर आप ही कुल्हाड़ा मारती हैं। ऐसे रावण के ऊपर या माया के ऊपर क्यों देश देना चाहिए? बीस तीन छियासठ की वाणी का पांचवा पेज। ये तो बाप समझते हैं ना कि जरूर ये देखो चलते चलते संग दोष में चले गए, फिर ये हो गया, उनको देवान आ गया या कुछ फलाना हो गया। यूं क्यों कहें कि माया का तूफान? बस माया के ऊपर दोष रखते रहते हैं। बहुत करके माया के ऊपर दोष नहीं रखना चाहिए, ये तो अपनी ही चलन उल्टी होती है, इसलिए नापास होने का डर लगता है, गिरते हैं या बहुतों को तंग करते हैं, ऐसे भी तो होते हैं ना, बहुतों को तंग करते हैं। फिर उनको समझाया तो जाएगा ना, अभी ये ब्राह्मण कुल का नहीं है, अभी जाकर के शूद्र कुल के बन गए हैं या तो अपने घर लौट गए हैं। ऐसे नहीं है कि घर में कोई ब्राह्मण कुल के नहीं है, ब्राह्मण कुल के भी हैं, परंतु जो ब्राह्मणपना छोड़ देते हैं, पढ़ना पढ़ाना छोड़ देते हैं, फिर जैसे के तैसे बन जाते हैं। उनको तो फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे ना, जो यहाँ से चले गए, देखो कितने चले गए, फिर कोई ब्राह्मण थोड़े ही कहे जाएंगे। हाँ पहले थे, फिर जा करके शूद्र बन गए हैं। अच्छा बाबा, फिर क्या वो जो शूद्र बन गए वो भी स्वर्ग में आएंगे? हाँ बच्चे, वो भी आएंगे। ऐसे भी नहीं कि वो नहीं आएंगे, यहाँ से होकर के जो गए, बाबा तो कहते हैं थोड़ा भी ज्ञान सुना तो भी प्रजा में आ जाएंगे। तो चलो वो भी कोई प्रजा में आ जाएंगे। कोई प्रजा में आ जाएंगे माना प्रजा तो किस्म किस्म की होती है ना, किस्म किस्म के धर्म है, किस्म किस्म की राजाइयां हैं, तो उनकी प्रजा भी किस्म किस्म की है। सूर्यवंशी प्रजा में नहीं आएंगे तो चंद्रवंशी में आ जाएंगे, क्योंकि आना तो है ना। यहाँ वाले जो हैं बड़ा झाड़ है, कोई कम झाड़ थोड़े ही है। ये जो हिंदू कहलाने वाले हैं और हिंदू से और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, किसी न किसी धर्म में, वो सब वास्तव में है तो आज सनातन देवी देवता धर्म के ना। तो कोई न कोई धर्म में कन्वर्ट हुए, वो सब प्रजा में आ जाएंगे, फिर भी तो आएंगे ना। और आकर के फिर कन्वर्ट होंगे, यानी दूसरे धर्म में फिर आएंगे। आएंगे तो यहाँ ना, आकर के फिर बदली हो जाते हैं। आते क्यों नहीं है हिंदू धर्म में, पीछे दूसरे धर्म में चले जाते हैं। ऐसे बहुत ही है, सिख धर्म में भी होंगे, फलाने फलाने धर्म में बहुत होंगे, जो भी आएंगे मुसलमान धर्म में है, पारसी धर्म में है, तो अनेक आएंगे। तुम देखेंगे ये तो बंदर है, यहाँ दूसरे धर्म वाले भी तो आ तो सकते हैं ना। अच्छा, जीवन मुक्ति का नहीं, मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि कोई नहीं आ सकते हैं। कोई भी आ सकते हैं। जिसको अपने घराने में ऊंच पद रहना होगा वो भी आकर के ये लक्ष्य ले जाएं कि बाप को याद करके हम वो पढ़ाई, जो ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई है, ये गए हैं यहाँ। तुम बच्चों को आगे साक्षात्कार कराया था कि बरोबर दूसरे धर्म वाले भी ऐसे आते हैं, बड़े बड़े मुख्य भी आते हैं, आ करके लक्ष्य ले करके चले जाते हैं कि बरोबर बाप को याद करना। अभी इसमें ऐसे तो नहीं यहाँ बैठेंगे तब लक्ष्य में रह जाएंगे, घर जाएंगे तो लक्ष्य में नहीं रह जाएंगे, नहीं। कोई भी यहाँ आवे, किसी भी धर्म का हो, वो समझ करके ये तो बरोबर बात है, हमको तो बाप को ही याद करना है। वही बाबा है जो कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। और वो बोलते हैं अपना याद को बढ़ाओ, शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। अच्छा, सभी शांति धाम को तो याद कर सकते हैं ना, क्योंकि शांति धाम में तो सभी धर्म वाले जाएंगे। सुख धाम में आवे या ना आवे तो चलो जा करके शांति धाम को याद करेंगे और अपने धर्म में ऊंच पद पा लेंगे, क्योंकि वो मुक्ति धाम में रहने वाले हैं और धर्म वाले। जीवन मुक्ति धाम सतयुग त्रेता में आने वाले नहीं हैं। तो जो आएंगे सुबह फिर अपने धर्म वालों को भी ऐसे ही कहेंगे, अभी मन मना भव बाप को याद करता है तो मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि और धर्म वालों को जीवन मुक्ति तो मिलती ही नहीं है, न उनको दिल होगी, उनकी दिल लगेगी ही नहीं। सच्ची सच्ची दिल जिनकी लगती है वो यहाँ लगती है। वो तो अच्छी तरह से सर्विस भी करते हैं, दिल भी लगती है, आप सामान भी बनाते हैं। बाकी जो और धर्म वाले हैं क्या क्या होते हैं वो तो आगे चल करके देखते रहेंगे, ये समझ सकते हैं कि अनेक धर्म वाले आएंगे जरूर, किस्म किस्म के आएंगे। क्योंकि जब बहुत कोई हो जाते हैं ना, देखो जो गुरु लेंगे हैं किस किस के तो लाखों करोड़ों भी फॉलोअर्स होते हैं। जैसे आगा खां है तो बेशक उनके करोड़ों फॉलोअर्स होंगे। अभी इनके तो सब होने के हैं ना, पिछाड़ी में आकर के बच्चे ये बाप को पहचान तो जाएंगे ना। तो जो फिर कहते हैं हो प्रभु तेरी लीला, वो आएंगे तो सही ना, और समझेंगे तो सही ना। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों कि किसको भी अच्छी तरह से ऊंच पद लेना है, जिसको भी लेना है, ये तो सब बच्चों को समझाया जाता है, इनको भी समझाया जाता है। और बहुत सेंटर्स में ऐसे भी हैं जो पढ़ाई पर कुछ भी अटेंशन नहीं होता है, ऐसे भी हैं ढेर हैं, पढ़ाई के ऊपर अटेंशन नहीं है। तो समझा जाता है कि बेचारे इतना ही इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, खुद भी कह देते हैं हमको इतनी फुर्सत कहाँ है। अगर निश्चय किसको हो तो वो तो ये बात कह ही नहीं सकता मुझे फुर्सत कहाँ है, वो तो एकदम लग पड़े। परंतु तकदीर में ही नहीं है, तो फिर वो लोग ऐसे ही कहेंगे। बाकी अच्छी जिनकी तकदीर है वो थोड़े ही ऐसे कहेंगे कि हमको फुर्सत नहीं है। 20, 3, 6 का छठा पीर वो तो बोलेंगे नहीं नहीं हम तो रात दिन बाबा से मेहनत करेंगे, मेहनत कर करके और पुरुषार्थ कर करके अपना भरसा लेंगे। तो वो भी बच्चे समझते हैं कि पुरुषार्थ भी उनका कल पहले मुआफी की ही चलता है, वो भी देखने में आएगा कि कितना ये पुरुषार्थ करते हैं। देखेंगे तो समझेंगे कि हाँ ये बच्चे भी कल पहले पुरुषार्थ जितना किया था इतना ही कर रहे। हाँ कभी पढ़ाई पर अच्छा अटेंशन जाता है, कभी संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। हम तो संग दोष ही कहेंगे ना, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इनके ऊपर माया का परसाया है। अगर संग दोष कहें तो भी कहें कि ग्रहाचारी है, तो इसको ग्रहाचारी भी कह सकते हैं कि भाई ये चलता तो अच्छा है परंतु अभी शायद इसकी कुछ कमाई में ग्रहाचारी है। नवग्रह होते हैं ना, तो दुनिया वाले तो आसमान के सितारों को ग्रह मानते हैं, जड़ सितारों को। बाबा कहते हैं तुम हो धरती के सितारे, जैसे वो नौ धर्म हैं, बाप के ऊपर नंबर वार विश्वास करने वाले, ऐसे ही तुम बच्चों में भी कोई है जो संग दोष में ग्रहाचारी लगाते हैं। तो संग दोष की ही बात हुई ना, तो फिर माया को बीच में क्यों लावे। चलो भले माया भी कह सकते हैं, ग्रहाचारी भी कह सकते हैं, ये क्या बात हुई। माया इसलिए कह सकते हैं कि और धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले ग्रह हैं उनको तो माया की ग्रहाचारी लगती है। बाप तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चों को पढ़ाने आए, खास आम सारी दुनिया को, तो सारी दुनिया में तो और धर्म वाले भी, तो ग्रहाचारी भी कह सकते हैं, माया भी कह सकते हैं। क्योंकि तो जाड़ में लेफ्ट साइड के जो भी धर्म हैं वाम मार्गी कहे जाते हैं, माया माने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन विकारों से प्रभावित है ना, इसलिए बोला माया भी कह सकते हैं। कहते हैं अभी इनको शुक्र की दशा थी, शुक्र माने शुक्राचार्य, जो असुरों का देवता था। रावण है ही असुर, किसी को कहेंगे बृहस्पति की दशा थी, बृहस्पति पतियों का पति, वो तो है ही शिव बाबा। शिव निराकार है, कोई न कोई साकार में प्रवेश करता है, तब वृक्षपति कहा जाता है। नहीं तो शिव तो आत्माओं का पिता है, और कोई संबंध तो नहीं बनता। क्या और कोई संबंध बनता है आत्म की स्थिति में? नहीं, जब साकार में आते हैं तो सात प्रकार के संबंध बनते हैं, उनमें पति पत्नी का भी संबंध है, तो वो है बृहस्पति, बड़े से बड़ा पति, उसकी बेहद की गृहस्थी है, और दुनिया में जो है वो सब हद की गृहस्थी वाले, बेहद के बाप की बेहद की गृहस्थी। कहते हैं तुम सात सजनीय हो, तो बृहस्पति की भी दशा बैठती है। ये है सबसे अच्छी ऊंच से ऊंच दशा। ग्रहाचारी बैठना, दशा में आना, माना उनसे प्रभावित होना। कोई कोई ये भी कहते हैं कि इन पर बंगल की दशा है। आगे चल करके शायद इनकी दशा सुधर जावे। कोई ऐसी दशा होती है जो घात भी कर देते हैं, कहेंगे राहु की दशा, कि राहु की दशा बैठ जावे तो एकदम नीचे गिराई देवे। तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाई आजकल इनके ऊपर कोई दशा बैठी हुई है। बाबा खुद भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे अच्छों अच्छों को कह देते हैं कि दशा बैठी है, फिर बाबा जो कुछ कहते हैं वो बच्चे मानते ही नहीं है। भगवान की नहीं मानते हैं तो क्यों न कहेंगे इनके ऊपर कोई उल्टी सुल्टी दशा बैठी हुई है। नहीं तो भगवान जो कहे तुरंत मान लेंगे। बाबा ने कहा है कि अगर कोई समझे कि नहीं ये ब्रह्मा बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं इन्होंने जो कुछ कहा उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, इसलिए बताया कि पता नहीं पड़ता है बच्चों को कि कौन डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि देहभान में रहते हैं तो देहधारी को ही समझ लेते हैं। निराकार की तरफ बुद्धि जाती ही नहीं, सारी बुद्धि साकार की तरफ चली जाती है। कि ब्रह्मा ही हमारा गुरु है, वो ही गीता का साकार भगवान है, ऐसे समझ लेते हैं। परंतु जो देही अभिमानी होंगे, आत्मा अभिमानी होंगे, वो तो सदैव कहेंगे कि हम बाबे के ही हुक्म कर, और कोई के हुक्म पर नहीं चलते हैं। और बाबा किसको कहा जाता है? बाबा तो कहा ही जाता है साकार निराकार के मेल को, तो दोनों हैं। हम शिव बाबा को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, और वो जो कहते हैं हम करते हैं, तो उनसे कोई अच्छा काम समझो न भी हुआ तो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा के ऊपर है। तो क्यों ना रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा के ऊपर चलना अच्छा है? जो बाबा कहते हैं हम करते हैं, तो ये समझ करके कि शिव बाबा मुझे कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल वो है, हम तो करते रहेंगे बस, पीछे रिस्पॉन्सिबल वो है। देवान में आने से कि फलाना हमको कहते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं, तो फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। पीछे वो कह देंगे कि देखो ये मेरी मत पर नहीं चलते हैं, ये शायद समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा की मत है, शिव बाबा की मत नहीं है। ये आर्डर करे तो बस उनका आर्डर तो सिर पर एकदम धारण करना चाहिए, परंतु नहीं, उनको ये समझ में नहीं आता है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आता है ये कौन कहते हैं, संशय बुद्धि बन पड़ते हैं, फिर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अगर वो निश्चय हो करके ऐसे कहें कि नहीं हम तो चलते ही हैं शिव बाबा की मत पर, अब ये जो भी कहे, जो भी कोई हमको कहते हैं बाबा ही कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं मैं तुमको कहता हूं ना, तो बस मेरा ही नाम समझो, तुम ऐसे समझो ही नहीं कि फलाना कहते हैं, मना दादा लेखराज ब्रह्मा कहते हैं। पीछे अगर कोई भी चीज उनसे नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मैं कह देता हूं ना बच्चों को, मैं जो श्रीमत देता हूं, अच्छा मैं पहली श्रीमत देता हूं, पहला पहला काम तो बाप को याद करो। अच्छा बाबा ने डायरेक्शन दिया, तुम्हारा फर्ज है याद करना। बाबा कहते हैं धारण करो, और औरों को भी धारण कराओ, बस तुम्हारा धंधा है ये है। तुमको कहते हैं अच्छा स्थूल काम में फलाना काम करके ले आओ। हाँ अच्छा जो हुक्म। देखो यहाँ होते हैं ना, आते हैं कई कई आकर यहाँ राजस्थान में, जो नौकर चाकर होते हैं ना, कोई भी होते हैं तो कहेगा जो हुक्म जो हुक्म। यहाँ का एक फैशन है राजाओं में, राजस्थान की राजाई में, कहेंगे जो हुक्म। वहां तो वो राजाएं हुक्म करते थे, यहाँ तो राजाओं का राजा बनाने वाला आया हुआ है, यहाँ तो हुक्म ही करते हैं शिव बाबा। उनके आगे तो घड़ी घड़ी फट से कह देना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा जो हुक्म, क्योंकि शिव बाबा को याद करने से अवस्था बहुत ऊंची चली जाएगी। घड़ी घड़ी शिव ही याद आवेगा, बस देखेंगे उठते बैठते बोलेंगे इनमें शिव बाबा ही हमको डायरेक्शन देते हैं। इनमें क्यों कहा और भविष्य के लिए क्यों कहा? पानी तो 66 की है ना, 69 में तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो यहाँ इनमें क्यों कहा? इनमें या इसमें कहना चाहिए, इसमें माने ब्रह्मा बाबा, परंतु वो तो 2 साल के बाद शरीर छोड़ देते हैं। इनमें इसलिए कहा कि 2 हैं, एक माँ के रूप में सहनशीलता का पाठ बजाने वाला और एक है बाप के रूप में असरों का सामना करने वाला। वो बाप है वो माँ है, तो दोनों में शिव बाबा पाठ बजाते हैं। इसलिए कहा जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो इनमें शिव बाबा ही हमको डायरेक्शन देते हैं, ऐसे समझना चाहिए तो बेड़ा पार हो जावे। शिव को याद करने से वो बुद्धि का ताला भी अच्छा खुलता जावेगा, धारणा भी होती जावेगी। जैसे बाबा कहते हैं बच्ची को भी, अरे बच्ची तुम घड़ी घड़ी ये समझो मैं शिव बाबा के रथ को श्रृंगार करती हूँ। घड़ी घड़ी समझो, 68 के बाद फिर किस घड़ी में समझो है? समझे या नहीं समझे? 68 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, फिर घड़ी घड़ी समझे या नहीं समझे? 68 के बाद कोई घड़ियां नहीं होती हैं क्या? तो घड़ी घड़ी ये समझो मैं शिव बाबा के रथ को श्रृंगार कराती हूँ। ऐसे समझेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा किसे कहा जाता है? ये शरीर ही बेड़ा है, नवैया है, इस नवैया में आत्मा बिठैया है, तो तुम्हारी आत्मा का बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार हो जाएगा कि आत्मा पार हो जाएगी है? कि दोनों पार हो जाएंगे है? जो पक्के सूर्यवंशी हैं उनका तो शरीर भी इस विषय वैतरणी नदी से पार जाएगा, उनका शरीर खत्म नहीं हो जाएगा, संचन काया इसी संगम युग में बननी है। तो तमो प्रधान शरीर से सत्व सतो प्रधान शरीर बन जाएगा, आत्मा तो उसमें रहेगी ना। तो आत्मा और शरीर दोनों का खेवैया मैं एक ही हूँ, ऐसे मुरली में बोला है। बाबा बोलते हैं कि बच्ची तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु होता थोड़े ही है।
अरे
क्यों ऐसे क्यों बोल दिया है? अरे जिन बच्चियों के सामने बोला या जिस बच्ची को बोला वो तो सामने थी ना, चंद्रवंश में आने वाली है या सूर्यवंश में आने वाली है? डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से पढ़ाई पढ़ने वाली है या ज्ञान चंद्रमा से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाली है प्रैक्टिकल में वो बच्ची है? किससे पढ़ाई पढ़ने वाली थी? अभी भी दीदी दादियां वहां बैठी हुई है, वो हंसी उड़ाती है ये शरीर से स्वर्ग में जावेंगे। अरे शरीर के साथ स्वर्ग में नहीं जावेंगे तो राधा कृष्ण जैसे बच्चे कैसे पैदा होंगे? विकारी शरीर से पैदा होंगे क्या? होंगे विकारी शरीर से, तो विकारी बच्चे ही पैदा होंगे। जरूर शरीर निर्विकारी बनेंगे, परंतु जिनको विश्वास ही नहीं है तो संशय बुद्धि विनश्यते। विनश्यते का मतलब आत्मा का विनाश नहीं होता है, उनके पद का विनाश हो जाता है। सूर्यवंश से चंद्रवंश में जाकर के पद पाएंगे। जब तक मैं बोलू नहीं कभी भी नहीं ये समझेगी कि मैं शिव बाबा के रथ को श्रृंगार कराती हूँ। देखो मैं सामने बैठा रहता हूँ ना, मैं कहूंगा तो समझ लेना हाँ बाबा। अभी बच्ची किसके रथ को श्रृंगार कराती है? शिव के रथ को। तो घड़ी घड़ी थोड़े ही उनको ये याद पड़ता है कि हम शिव के रथ को ये श्रृंगार कराती हूँ। क्या याद पड़ता है, है? जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की गोद ली उनको क्या याद पड़ता है, है? हाँ, वो गोद रूपी शरीर में ही लगाव लग गया, उनको वो शरीर ही याद आता है। 20-3-6 की वाणी का 7वां पी तो घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आना चाहिए कि शिव बाबा ने इनका रथ लिया है। तो ये याद आता है, तो ये कहता ही तब हूँ जब इसमें प्रवेश करता हूँ। प्रैक्टिस डालने के लिए ऐसा समझना है तो उनको ये प्रैक्टिस पड़ जावे तो इसमें भी इनका बेड़ा पार हो जाए। घड़ी घड़ी शिव को याद करने से इनको खुशी होगी। शिव बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करने की तो बाबा कहते ही हैं, उठते बैठते वो ही डिफिकल्टी बाबा समझाते। ये बहुत मुश्किल होता है शिव बाबा समझना। किनको होता है उसी समय की याद की, इसी समय की बात की या भविष्य की बात की है? उसी समय की बात की कि बच्चियों को ये समझना बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगार करते हैं। उनको तो डिफिकल्टी है शिव बाबा के रथ को याद करना, फिर सहज किसके लिए है? सहज उनके लिए है जिन्होंने गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े ब्रह्मा बाबा के गोद का संग ही नहीं लिया है। यहां वालों को जो बैठे हैं रथ याद आने से शिव बाबा याद आता है, या रथ वाला अर्जुन याद आता है? पुरुषार्थी कौन याद आता है? हैं? पुरुषार्थी याद आता है, ये तो गलत हो गया। पुरुषार्थ कराने वाला याद आना चाहिए या पुरुषार्थी याद आना चाहिए? हैं? कराने वाला याद आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करना बहुत मुश्किल होता है, भूल जाते हैं। तो अभी ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया हमको भुला देती है? क्यों नहीं अपनी भूल समझनी चाहिए कि हम ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं? हैं? गीता में जो कहा है संगात संजायते कामा, किसी का संग करने से कामना पैदा हो जाती है, वो ही बार बार याद आता है। लगाव पूर्वक अगर संग किया तो ऐसा हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं वो साधारण तन है या गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा शरीर है? साधारण तन है, ताकि सहज सहज शिव बाबा सबको याद आए। तो क्यों नहीं अपनी भूल समझनी चाहिए कि हम ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। ऐसे क्यों नहीं कहते हैं बाबा आधा कल्प की हमको प्रैक्टिस नहीं है? अब ये नई प्रैक्टिस आपने हमको दी है, वो प्रैक्टिस हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। और भूल जाएंगे तो कोई न कोई उपद्रव हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा। देह अभिमान में आ जाएंगे। तुम्हारे से कुछ न कुछ खताएं हो जाएंगी। कब? है? अगर ब्रह्मा बाबा याद आता है तो सिर्फ साकार रथ याद आता है और उसमें शिव बाबा भूल जाता है। याद भी हमारी प्रवृत्ति मार्ग की है या निवृत्ति मार्ग की है? आत्मा और शरीर ये दोनों की प्रवृत्ति है, इसलिए भक्ति मार्ग में आत्मा को पुरुष मानते हैं और है भी पुरुष। और पांच तत्वों का ये चोला प्रकृति, ये प्रकृति पांच तत्वों का जो चोला है उसे स्त्री का रूप देते हैं। तो देवान में आने से कुछ कथाएं हो जाएंगी, अगर हिर जाएंगे तो बहुत याद करेंगे। और देवान में रहने की अगर हिर जाएंगे तो भूल जाएंगे, याद ही नहीं करेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं परंतु बाबा को कोई याद नहीं करते हैं, क्योंकि नॉलेज तो बाबा ने समझा ही दी है ना, नॉलेज तो बिल्कुल सहज है, वो तो कोई भी बैठ करके समझा सकते हैं। जबकि शिव बाबा को याद करते रहे जिससे विकर्म का बोझा तो उतरे ना। तो घड़ी घड़ी आकर के उनको रंजते हैं। ऐसे तो बहुत हैं बाबा के पास, बाबा खुद जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बड़ी अच्छी वाणी चलाते हैं, योग कुछ भी नहीं है एकदम, बाबा वो बात जानते हैं क्योंकि चलन से ही समझ जाते हैं कि योग में नहीं रहते हैं। तो फिर उनके पाप रह जाते हैं, फिर वो पापों को तो भोगना ही पड़ता है ना, अच्छी तरह से भोगना पड़ता है, सजाएं भी खानी पड़ती हैं जिनको है, जिनको याद में घड़ी घड़ी साकार याद आता है, निराकार शिव भूल जाता है। बाप तो हर एक बात में समझाते भी रहते हैं कि बच्चे कैसे चलो क्या करो, घड़ी घड़ी ऐसे नहीं कि तूफान आ जाते हैं ये करने से वो करने से, नहीं, तूफान तो सबको आते हैं, इसमें तूफान की क्या बात है, इसमें तूफान को नहीं समझे नहीं तो हेर पड़ जाती है। ऐसे समझे कि मेरी भूल है, मैं सीमत पर चलता नहीं हूँ या तो चलती नहीं हूँ, बाकी तुम सीमत पर चलो तो मैं रिस्पांस में लू हूँ हर एक बात के ऊपर। सो तो बाबा देखते रहेंगे कि चलते हैं कि नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं तो फिर धोखा खाते हैं, बहुत ही धोखा खा लेते हैं। फिर जो जो इतनी राजाई, इतनी राजाइयां हुई, मैं ये बाबा से राजाई लेता हूँ, जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। सो तो बरोबर है, और तुम आए भी खास इसीलिए हो कि हम आ करके खास करके राजयोग सीखे। यहाँ कोई प्रजायोग नहीं सिखलाया जाता है, ये पढ़ाई राजयोग की है या प्रजायोग की है? राजयोग की पढ़ाई है। हाँ, इतना जरूर है, जो मेरे से आकर के दो शब्द भी सुनेंगे तो वो स्वर्ग में जरूर आवेंगे, प्रजा में आ जाएंगे, बाकी राजा नहीं बनेंगे। तो यहाँ कोई प्रजा योग नहीं सिखलाया जाता है, सिखलाया ही जाता है राजयोग, क्योंकि माता पिता जो पुरुषार्थ करते हैं वो भी तो जानते हैं, साक्षात्कार भी बच्चों को हो गया कि बरोबर देखे जाते हैं, सूक्ष्म बतन में जाते हैं ना, तो बरोबर वो तो है ही, जैसे कि उन्होंने तो पुरुषार्थ किया ही है, तो उनके पिछाड़ी कहा जाता है कि फॉलो करो, तुम भी तक्ष नशीन बनो और उनके मत पर भी चलो, वो तो सर्टेन बात है ना। तो बाबा है ये तो सर्टेन है कि ये बनेंगे राजा रानी, तो तुम बच्चे भी इनको फॉलो करो, किनको? इनको माने किनको? ऐसा कौन सिर्फ नहीं कहा, क्या कहा? इनको फॉलो करो, है? इनको इसलिए कहा कि माता पिता दोनों को फॉलो करना है। राम बाप को कहा जाता है, जो कृष्ण वाली आत्मा है, मृदुल स्वभाव वाली, वो माता का पार्ट बजाती है, ये सच रूपी चक्र के हीरो हीरोइन है राम और कृष्ण। तो कहा इनको फॉलो करो, कोई मुझे फॉलो करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो मूल वतन में जाकर बैठ जाता हूं 5000 साल के लिए, तो मुझे फॉलो करोगे तो क्या मूल वतन में जाके बैठना है? बैठना है, है? नहीं, मेरी तो ये राय माननी है कि मन मना भव मध्याजी भव, और अच्छी तरह से पढ़ो और पढ़ाओ। मैं तो सिर्फ डायरेक्शन देता हूं, डायरेक्शन देने वाला डायरेक्टर पर्दे के पीछे से डायरेक्शन देता है ड्रामा में, आगे देखने में नहीं आता है। आगे कौन देखने में आता है? हीरो हीरोइन। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं पढ़ता हूं, क्या न मैं राजयोग की पढ़ाई पढ़ता हूं और न राजा बनता हूं, मैं पढ़ाता हूं तुम बच्चों को, फिर तुम्हारे जो मम्मा बाबा हैं तुम उनको फॉलो करो, जो फिर उनके तख्त नशीन बनो। तो जितना जो फॉलो करेंगे, इसीलिए गाया जाता है फॉलो फादर एंड मदर, बहुत करके तो फॉलो फादर फादर को कहते हैं, यहां मुझ न जाएं कि फॉलो फादर क्यों कहे, फादर तो हमको सिखलाते हैं, उनको फॉलो क्या करें? अरे यहां कोई एक तो नहीं है, है? बेहद का फादर एक है, है? वेद के फादर तो दो हैं, एक है शिव बाप आत्माओं का बाप, दूसरा है मनुष्यों का बाप। तो यहाँ एक तो नहीं है, यहाँ तो प्रवृत्ति मार्ग है। क्या कहा? कौन सा मार्ग है? प्रवृत्ति मार्ग है। कैसे है? शिव बाप आते हैं तो पहली पहली प्रवृत्ति कौन है शिव बाप की? है, मैं जिस तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, और ब्रह्मा के चित्र में पांच मुख दिखाई जाते हैं। माने कोई ब्रह्मा एक नहीं है, ब्रह्मा अनेकों के नाम है, परंतु वो नंबर वार है। उनमें अव्वल नंबर ब्रह्मा भी होगा। जिसे कहते हैं परम ब्रह्म, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो शिव ज्योतिबिंदु जब आते हैं तो आते ही ज्ञान सुनाने के लिए सन 36 में किस में प्रवेश करते हैं? प्रजापिता में या ब्रह्मा में? प्रजापिता में प्रवेश करते हैं, वो ही परम ब्रह्म है। बाद में सन 47 से दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। जब उनकी 60 वर्ष अवस्था होती है जो सन 87 में 100 साल पूरा होता है, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, तो सन 47 से माता की वाणी चली, उससे पहले पीयू की वाणी चलती थी प्रजापिता। बीज कौन डालता है? बाप बीज डालता है। बीज थोड़ा होता है या जो पेट में बीज पड़ता है वो भ्रूण हो जाता है, बच्चा बन जाता है, वो बड़ा होता है। बीज छोटा होता है और भ्रूण बड़ा होता है। तो माँ है ब्रह्मा, ब्रह्मा के तन में जो गुप्त ज्ञान सुनाया, उस गुप्त ज्ञान को माता भी नहीं समझ सकती तो बच्चे कैसे समझेंगे? तो वो ही यज्ञ के आदि का पिता, जिसमें शिव बाप पहले प्रवेश करते हैं, वो दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आता है तो ज्ञान का विस्तार कर देता है। शिव उसमें प्रवेश करके सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाते। अच्छा, ओम शांति।